हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स नंबर 12। कृपया भगवान के मुखारविंद से निकले हुए इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी, अयुक्तः कामकारेण फले सत्तो निबध्यते, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी, अयुक्तः कामकारेण फले सत्तो निबध्यते, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी, अयुक्तः कामकारेण फले सत्तो निबध्यते, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी, अयुक्तः कामकारेण फले सत्तो निबध्यते, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी, अयुक्तः कामकारेण फले सत्तो निबध्यते। शब्दों का अर्थ, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम आप्नोति नैष्ठिकीम्। युक्त अर्थात भक्ति में लगा हुआ, कर्म फलम कर्म फलम अर्थात समस्त कर्मों के फल, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, शांतिम आप्नोति शांति अर्थात पूर्ण शांति को आप्नोति यानी प्राप्त करता है, नैष्ठिकीम अर्थात अचल, अयुक्तः कामकारेण फले सत्तो निबध्यते। अयुक्तः अर्थात भावना कृष्ण भावना से रहित, कामकारेण अर्थात कर्म के फलों को भोगने के कारण, फले फल में सक्त आसक्त निबध्यते अर्थात बंधता है। अनुवाद, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्त रहता है। जब व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए काम करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। श्रीमद् भागवतम में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। श्री कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता है। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है, वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है, यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्व पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपीश गोपीका कांता, श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुत देवी, प्रणमामि हरिभ्ये। वंचाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। आज भगवान इस पूरे सेक्शन का, जब तक अब तक हमें जो बताया भगवान ने, उसका निष्कर्ष बता रहे हैं। अभी जो ये श्लोक अब हम पढ़ रहे हैं ना, वो एक निचले स्तर पर आ गया। कैसे आ गया ये देखो, भगवान अब तक हमें क्या पढ़ा रहे थे, अभी तक भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि कर्म योग और ज्ञान योग एक ही स्तर पर है, पर इसमें से कर्म योग ज्यादा आसान है। मतलब क्योंकि कार्य करना जीव का स्वभाव है, इसलिए कार्य करेगा तो क्या, भगवान ने कहा सुखम बंधात प्रमुच्यते, उसको सुख से वो कर सकता है इजीली। उसके लिए ये कार्य करना बहुत ज्यादा आसान है उसके के वो कार्य करना छोड़ दे, है ना। लेकिन इस श्लोक में भगवान कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस श्लोक में भगवान कर्म योग और कर्म कांड के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, एक कर्म होता है युक्त और दूसरा कर्म होता है अयुक्त। ये देखो, जो हम पहली लाइन में पढ़ रहे हैं वो युक्त कर्म के लक्षण हैं, और जो सेकंड लाइन में पढ़ रहे हैं वो अयुक्त कर्म। युक्त का मतलब होता है कर्म योग और अयुक्त का मतलब होता है कर्म कांड। सही, उसमें भगवान क्या बता रहे हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। युक्त यानी जब आप भक्ति में लग जाते हो, भगवान के साथ अपना योग अपना संबंध जोड़ के, कर्म फलम त्यक्त्वा कर्मों के फलों को त्याग देते हो, फिर क्या प्राप्त होता है, शांतिम आपनोति नैष्ठिकी। ऐसी शांति जो अचल हो, जिसके अंदर कभी भी ना समाप्ति ना आए, मतलब इटर्नल शांति आपको प्राप्त होती। कब? जब आप भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ के भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हो, कर्म फलों के अंदर कोई आसक्ति नहीं रखते हो। और दूसरी नीचे लाइन में क्या बता रहे हैं, अयुक्त काम कारेण, अयुक्त अर्थात कृष्ण भावना से रहित होकर, यानी भगवान के साथ अपना संबंध जोड़े बगैर कार्य क्यों कर रहे हो, काम कारेण अर्थात इंद्र तृप्ति के लिए, कर्म फलों को भोगने के कारण आप कार्य करते हो। फले सक्तो, और फल के अंदर कर्म का जो फल है उसमें आसक्ति रखते हो, निबध्यते बंधन का कारण बनते हो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस और भौतिक कॉन्शियसनेस के विषय में बता रहे हैं कि यदि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस होकर कार्य कर रहे हो, युक्त होकर कार्य कर रहे हो या अयुक्त होकर कार्य करते हो, उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं शुरू में, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आपनोति नैष्ठिकम्। अगर आप भगवान के साथ अपना योग जोड़ के कार्य करोगे तो इटर्नल शांति प्राप्त होगी। यानी इस श्लोक में भगवान ने हमें इटर्नल शांति प्राप्त करने का एक तरीका बताया है। वास्तव में भक्तों, संसार में हर कोई शांति चाहता है, हर कोई आनंद प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है। और भगवान क्योंकि सच्चित आनंद है, भगवान क्योंकि संतुष्ट है, भगवान क्योंकि आनंद का सागर है, और भगवान क्योंकि सदैव प्रसन्न रहते हैं, इसलिए आत्मा क्योंकि भगवान का अंश है तो वो भी वही चाहती है। आत्मा भगवान का अंश है, उसका एक ही कार्य है कि वो भगवान की सेवा करे। आत्मा सत्य है, एक तरह से ये शरीर भी सत्य ही है कि दिखता है शरीर से कार्य करते हैं। तो फिर माया क्या है, माया ये है जब अज्ञानता के कारण आत्मा ये सोचने लगती है कि मैं ये शरीर हूँ, यही माया है, यही अज्ञानता है। आत्मा शरीर के अंदर है परंतु ये शरीर नहीं है। आत्मा का कार्य है शरीर के द्वारा अपने भगवान की सेवा करे, परंतु वो अपने इस लक्ष्य को भूल गई है। ये शरीर आत्मा को इसलिए प्रदान किया गया है कि इस शरीर के द्वारा आत्मा को आत्मा मतलब इस शरीर के द्वारा आत्मा को प्रसन्न किया जाए। परंतु विडम्बना ये है कि आत्मा जो है वो इतनी अज्ञान में फंस जाती है कि जीव अपने लक्ष्य को भूल जाता है और क्या सोचता है कि शायद ये शरीर इसलिए प्राप्त हुआ है कि इसके अंदर आत्मा है और इस शरीर को प्रसन्न करना है। सबसे बड़ी अज्ञानता यही है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में देखें तो हम समझ जाएंगे कि इंद्रियों को संतुष्ट करना संभव ही नहीं है। जिस जिसको जितना भी प्राप्त होता जाता है, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जिस जिसने जितनी भी स्ट्रगल की है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। आप छोड़ दें छोटे छोटे, हमें पता है, लेकिन अगर बड़े से बड़ा हिरण्यकश्यपु को देखिए, उसके पास संसार भर का धन था, दौलत थी, ऐश था, परंतु फिर भी वो अपने इस वैभव से संतुष्ट नहीं थे। रावण के पास हजारों रानियां, सोने की लंका और निष्कंटक राज, परंतु वो फिर भी अपनी वासना से नहीं जीत सका। इन भौतिक जीवों को छोड़ के यदि हम स्वर्ग के राजा इंद्र की ओर जाएं, तो इंद्र स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग का आधिपत्य है, परंतु फिर भी संसार में जब भी कोई यज्ञ करता है तो वो बेचैन हो जाता है। जैसे महाराजा पृथु जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र बार बार क्या कोशिश कर रहा था कि उसका अश्व चुरा ले। इंद्र के पास इतनी अप्सराएं हैं स्वर्ग में, उसके बावजूद भी वो अपनी तृप्ति के लिए गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के पास आते हैं। परंतु वास्तविकता तो ये है कि इंद्रियों की तुष्टि संभव ही नहीं है, इच्छाओं को पूरा किया ही नहीं जा सकता। प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों हम अपनी इंद्रियों को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। इसका उत्तर बहुत ही आश्चर्यमय है, और उसका उत्तर ये है कि ये इंद्रियां हैं ही नहीं जो संतुष्ट चाहती हैं, है ना। ये इंद्रियां थोड़े हैं जो आनंद चाह रहे हैं, ये इंद्रियां थोड़ी हैं जो संतुष्टि चाह रही हैं। इंद्रियां तो जड़ हैं, वो कभी प्रसन्नता नहीं चाहती हैं और ना ही वो कभी प्रसन्न हो सकती हैं। वास्तव में तो ये आत्मा है जो संतुष्टि चाहती है। आत्मा इटर्नल है और वो अनलिमिटेड आनंद, अनलिमिटेड प्रेम, अनलिमिटेड सेटिस्फेक्शन चाहती है, क्योंकि ये उसकी नेचर है। और ये संतुष्टि उसको केवल तभी प्राप्त हो सकती है जब वो कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित करे। परंतु ये सनातन आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर अज्ञानता के कारण इन भौतिक वस्तुओं के द्वारा संतुष्ट होना चाहती है, परंतु इस भौतिक शरीर के द्वारा भौतिक प्रकृति की किसी भी वस्तु से आत्मा को संतुष्ट करना असंभव है। संसार की वस्तुओं के अंदर जो स्वाद है वो केवल इतना ही है कि यदि कोई व्यक्ति एक रेगिस्तान में जा रहा हो, उसे बहुत बहुत प्यास लगी हो और कहीं से एक पानी की बूंद आकर उसकी जीवा पर आ गिरे, तो संभव है एक क्षण के लिए उसे थोड़ी सी संतुष्टि प्राप्त हो, परंतु अगले ही क्षण यदि वो बूंद गायब हो जाए तो उससे भी अधिक तृष्णा का अनुभव करेगा वो व्यक्ति जितना कि उस बूंद के होने से पहले कर रहा था, क्योंकि इतनी कम मात्रा में संतुष्टि आपको संतुष्ट करने की बजाय और भी ज्यादा डिस्टर्ब कर लेती है। उसी प्रकार संसार में यदि जीव को थोड़ा सा आनंद प्राप्त होता है जो कि बहुत ही क्षणिक है, अशाश्वत है, उसको प्राप्त करके जीव सोचता है मुझे और भी चाहिए, मुझे और भी आनंदित होना है, मुझे और भी आनंदित होना है, आत्मा तड़प रही है। शास्त्र कहता है कि संसार के समस्त सुख उसी प्रकार हैं जिस प्रकार रेगिस्तान में खड़े हुए प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की बूंद। इस संसार में कोई सोचता है कि धन से हम सुखी हो सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम मैगजीन्स वगैरह में पढ़ते हैं कि कितने लोग होते हैं जो मिलियनर होते हैं, अरबपति खरबपति होते हैं, क्या वो संतुष्ट हैं? असंभव, जिसके पास जितना है वो उससे भी अधिक चाहता है। कुछ जीव सोचते हैं कि शराब पीने से हमें संतुष्टि प्राप्त होगी, क्या कभी देखा है किसी शराबी को संतुष्ट? जितना पीता है और चाहिए, प्यास और बढ़ती है, तड़प और बढ़ती है, इतना हो जाता है कि जी नहीं सकता। और सम पीपल थिंक्स दैट सेक्स लाइफ इज सेटिस्फेक्शन, ऑल्दो प्रोस्टिट्यूट हैविंग सेक्स 10 to 15 times अ डे आर दे सेटिस्फाइड? इम्पॉसिबल। कोई जितना भी चाहता है, जितना भी प्रयास कर रहा है, इच्छाएं वासनाएं और बढ़ रही है और भी उन्नति हो रही है, क्यों? क्योंकि ये शरीर की वासना है ही नहीं, वास्तव में ये आत्मा की तड़प है, और ये आत्मा है जो अपने कृष्ण को ढूंढ रही है, अपने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तड़प रही है। इन भौतिक वस्तुओं में वो कृष्ण की सी संतुष्टि खोज रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो इन भौतिक वस्तुओं से इटर्नल सुख कभी नहीं प्राप्त कर सकती। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि किस प्रकार हम अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से इटर्नल शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये आत्मा आत्म साक्षात्कार ही हमारी वास्तविक समस्त प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन है। ये प्रैक्टिकल है, ये ऐसा नहीं है कि आपको छला जाना है कि आप एक पद्मासन लगाकर बैठ जाइए, अपने पूरे ध्यान को सर पर लगाइए, अपने नेत्रों को आधा बंद कर दीजिए, ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाओ, ऐसा नहीं। गीता तो हमें बताती है कि हम सब जीव आत्माएं भगवान का अंश हैं, और जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। ये इतना प्रैक्टिकल है कि कोई भी कहीं भी रहकर इसको कर सकता है। इसके लिए केवल इतनी ही योग्यता काफी है कि आपके अंदर श्रद्धा हो, हृदय में सिंसियरिटी हो, फिर आप शुद्ध भक्तों का संग करके भगवत प्राप्ति बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यदि कोई ऐसा कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वास्तविकता ये है कि वो ये करना ही नहीं चाहता, है ना। अगर कोई करना वास्तव में आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत ऐसा है ही नहीं जो कोई ना कर सके, परंतु यहाँ पर विडंबना क्या है कि जीव स्वयं को धोखा देना चाहता है और आध्यात्मिक में उन्नति करना चाहता ही नहीं। जीव सोचता है कि मैं सबसे अलग हूँ, अगर आज तक किसी ने धन से सुख प्राप्त नहीं किया तो क्या हो गया, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। भले ही आज तक किसी ने अपनी इंद्रियों की वासनाओं को पूरा करके आनंद प्राप्त नहीं किया तो क्या हुआ, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं तो स्पेशल। भले ही आज तक किसी ने भी भौतिक वस्तुओं से शांति प्राप्त नहीं की, परंतु मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निभज्यते। यदि कोई भगवान के साथ युक्त नहीं है, भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता है, और जो अपने श्रम का फले सक्त, अपने श्रम के फल के अंदर आसक्त है कि मैं अपने योग्यता से अपने कर्मों के कारण संतुष्ट हो जाऊंगा, उसके फल प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो भगवान ने कहा अरे वो सुखी नहीं, बंधन में फंसेगा। क्योंकि भगवान ने कहा अयुक्त काम कारेण, यदि वो कर्म फल को भोगना चाहता है, फलों में आसक्त है, फले सक्तो निभज्यते, वो तो बंध जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, झुलसता रहेगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रोगों में, बार बार आता रहेगा माता के गर्भ में। तो फिर इटर्नल शांति प्राप्त करने का भगवान ने बहुत ही सुंदर नैष्ठिकीम शांति ना सुंदर भगवान ने कहा, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। देखो बेटा, अगर आपको शांति में अपनोती नैष्ठिकीम, इटर्नल शांति चाहिए, अचल शांति चाहिए, ऐसी शांति जिसका कभी ह्रास ना हो, ऐसा सुख, ऐसा आनंद जो कभी समाप्त ना हो, यदि चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, मेरे से अपना योग छोड़ो, अपने संबंध को पुनर्स्थापित करो। और ये जो वापस से रिकनेक्ट हो जाएगा ना तुम्हारा मेरे साथ संबंध, उसके बाद अपने समस्त कर्मों के फलों को मेरे लिए त्याग दो। भगवान बोलते हैं चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 27 में, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ दान देता है, जो तपस्या करता है, जो कुछ खाता है, वो सब मुझे अर्पण कर। अर्जुन बोला क्यों कृष्ण, ऐसा क्यों करो? तो भगवान कहते हैं 28 में, शुभा शुभ फलैरेवम् मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैशसि। शुभा शुभ फलैरेवम् मोक्षसे कर्म बंधनै। यदि तुम ऐसा करोगे तो समस्त शुभ और अशुभ कर्म के फलों से छूट जाओगे, कोई बंधन नहीं बांधेगा तुम्हें, और इस संन्यास योग से युक्त होकर अपने चित्त को स्थिर करके तुम माम उपैशसि मुक्त हो जाओगे और मेरे पास आ जाओगे। और यह संसार तो दुखों का घर है, ये संसार ऐसा है नहीं कि इसमें रहकर संतुष्टि प्राप्त की जाए। ये भौतिक संसार तो दलदल की तरह है, जितना जितना आप इस दलदल में अंदर धंसते जाओगे उतना ही निकलना कठिन हो जाएगा, और उतना ही हम बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन में फंसते जाएंगे। परंतु यदि आपको इस दलदल से ग्रस्त नहीं होना है तो आपको कमल की तरह बनना पड़ेगा, जैसे भगवान ने कल कहा ना, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसाम, कि यदि आप मेरे लिए कार्य करोगे, कर्मों के फलों में कोई आसक्ति नहीं रखोगे, तो आप ऐसे ही रहोगे जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कभी खराब नहीं होता। कमल का फूल भले ही कीचड़ में खिलता है परंतु कभी कीचड़ से लिप्त नहीं होता। उसी तरह कृष्ण कॉन्शियसनेस हमारी कॉन्शियसनेस को उस कमल की तरह बना देती है, कि भले वो भौतिक कार्य भी करता है जीव, तो भी वो क्या सोच के करता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कृष्ण का इटरनल दास हूँ और मैं कृष्ण को प्रसन्न करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और जब वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है तो इनडायरेक्टली वो स्वयं शांतिम शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, वो परम शांति को प्राप्त करता है। जीव जब तक अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है तब तक उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया है कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यही अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्त होता है। जो कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कार्य करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्मों के फलों की कोई चिंता नहीं रहती। वास्तव में कर्म तब बंधन का कारण बनते हैं जब आप उसे अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हो। जब आप कर्मों के फलों में आसक्त होकर कार्य करते हो तो क्या होता है, निबद्धते। लेकिन यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो कभी भी बंधन का कारण नहीं बनते, बल्कि उसी तरह जैसे हमने कल बताया था कि कांटे से कांटे को निकालते हैं, उसी तरह भौतिक कार्यों से बंधन होता है और आध्यात्मिक कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो किए जाते हैं उससे मुक्ति प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाल जी कहते हैं कि क्योंकि कृष्ण दिव्य पद पर है, कृष्ण परम पद पर है, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य किया जाता है उसका कभी भी भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। और क्योंकि कृष्ण समग्र प्राणियों के हितैषी हैं, सर्व मंगलमयी हैं, इसलिए जो भी कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो उसी से जीव को शांति प्राप्त होती है। लेकिन जो कार्य इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है वो आपको फंसा देता है, उससे कभी शांति नहीं मिलती। जब जीव की अज्ञानता समाप्त हो जाती है और उसे यह अनुभूति हो जाती है कि इस शरीर से मेरा लेना देना नहीं है, इस शरीर को मैं चाहे कितना भी संतुष्ट करने के प्रयास करता रहूं तो भी मैं उसे कभी संतुष्ट नहीं कर सकता, भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र वो हैं जिनको संतुष्ट करके मैं अपने आप को संतुष्ट कर सकता हूँ। तो यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है, या अनुभूति के कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में और कोई नहीं है जो मुझे संतुष्ट कर सके। यही अनुभूति के कृष्ण की सुरक्षा में रहकर, कृष्ण की शरण में रहकर ही मैं शांति प्राप्त कर सकता हूँ, अभय प्राप्त कर सकता हूँ। यही कृष्ण भावनामृत है।